المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني يشر، اللهم أجل له الفرج، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. غدیر کے اعلان کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں، اس عنوان پہ مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کہ غدیر میں جب یہ اعلان ہو گیا کہ علی ہمارا مولا، اور ہمارے سے مطلب ساری کائنات کا مولا، تو اب علی کو مولا ماننے کے بعد، کل کی پوری مجلس غدیر کے حوالے سے تھی، کس طرح اعلان ولایت ہوا، کس طرح اس پر دشمنوں نے اپنا وہ سخت ترین ریئیکشن شو کیا، کس طرح حارث ابن نعمان فوہری پر وہ پتھر آسمان سے آ کے گرا، وہ ساری باتیں کل تھی. آج اس کے بعد کی چیز کہ علی کو مولا مان لی. ہم مانے تو کیا فرق پڑتا ہے، ہم نہ مانے تو کیا فرق پڑتا ہے، فائدہ تو ہمارا ہی ہے نا. لیکن اب بات یہ ہے کہ جنہوں نے علی کو اپنا مولا مان لیا، تو اس کے بعد اس کا مطلب کیا؟ ایک جملہ میں نے دو دن پہلے عرض کیا تھا، اور آج اس جملے کو ذرا آگے بڑھانا ہے، پھر بھی پوری بات نہیں ہوگی. وہ جو جملہ مزید ایک دن اور مکمل کیا جائے گا، وہ جملہ یہ تھا کہ غدیر میں غدیر میں غدیر میں علی کی محبت کا اعلان نہیں کیا گیا، علی کی ولایت کا اعلان کیا گیا. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. محبت علی الگ چیز ہے، ولایت علی الگ چیز. محبت علی سے اسلام شروع ہوا ہے، ولایت علی پہ اسلام مکمل ہوا. یہ دو الگ الگ چیزیں. اور اگر ہم بہت ہی ڈیپتھ میں جائیں تو یہ کہا جا سکتا کہ جب علی سے عقیدت ہوتی ہے تو وہاں سے محبت اسٹارٹ ہوتی، اور جہاں محبت مکمل ہوتی ہے وہ ولایت کہلاتی. علی کی مکمل محبت، کمپلیٹ لو آف علی، وہ ولایت ہے. کیا مطلب اس کا؟ تو میں کیا بتاؤں آپ کو، اللہ کے رسول کے 120,000 اصحاب، یعنی 1,20,000 صحابیوں، جو سب سے افضل صحابی ہے، سب سے افضل صحابی، جس کا تذکرہ آپ ہر جمعے کے دن نماز جمعہ کے سورہ جمعہ میں سنا کرتے ہیں، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، سورہ جمعہ کی تیسری آیت. پیغمبر نے سلمان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا نا کہ یہ تیسری آیت سلمان کی قوم کے بارے میں آئی، تو پیغمبر کا سب سے عظیم صحابی سلمان فارسی. اچھا، واقعے کا صرف آخری حصہ آپ کے سامنے بیان کرنا، یعنی وہ ہمارے آج کے ٹاپک کے لیے دلیل بنے گی، لیکن اس کے لیے پورا واقعہ بھی سنانا پڑے گا جو بہت مشہور ہے. مشہور کیا چیز ہے؟ ایک سٹوری ہے جس کا آدھا حصہ ڈائریکٹ ہم سے اس کا کنسرن نہیں، ڈائریکٹ وہ ہمارے ہاں اتنا پڑھا جاتا ہے کہ ابھی میں شروع کروں گا آپ کہیں گے مولانا نے پوری مجلس ریپیٹ کر دی، اور آخری حصہ جس کا ڈائریکٹ ہم سے تعلق ہے وہ بہت کم پڑھا جاتا. ایک ہی حدیث، ایک ہی حدیث، آدھی غیروں کے لیے ہے، آدھی ہمارے لیے. ہم وہ والا حصہ تو بہت شوق سے سنتے ہیں، اور ہم کو آدھا ہی سنایا جاتا جس کا دوسروں سے تعلق. لیکن جیسا کہ میں نے کہہ دیا کہ میرے بارے میں تو کمپلین ہی یہ ہے کہ دوسرے لوگ آتے ہیں تو غیروں کو برا کہہ کے جاتے ہیں، آپ تو ہم ہی کو برا کہہ کے جا رہے ہیں. خیر، وہ برا کہہ رہا ہوں کہ آپ کے فائدے کی بات بتا رہا ہوں، وہ بات کا اسٹیج ہے. تو سلمان فارسی کا یہ مشہور واقعہ، آج کل دنیا بھر میں ایک رواج ہوا کہ کوئی آدمی بھی اپنی پرفارمنس آپ کے سامنے پیش کر کے کہتا کہ آپ یہ بتائیے کہ 10 آپ مجھے کتنے نمبر دیں گے. یہ آج کی بات نہیں ہے، پیغمبر نے اپنے زمانے میں یہ سسٹم بنایا تھا یہ کہہ کر کہ ایمان کے 10 درجے ہیں, سلمان کو 10 کے 10 درجے مل چکے ہیں, 10 out of 10, ابو ذر 9 out of 10, مقداد 8 out of 10, یہ پورا سسٹم. تو ایمان کے 10 درجے ہیں, وہاں تک سلمان پہنچ چکے ہیں. اب وہ لفظ میں نہیں کہنا چاہتا کیونکہ وہ تو مولا کا ٹائٹل, پورا ایمان, کل ایمان, وہ سلمان کے پاس آ گیا ہے کیونکہ کل ایمان کے ماننے والے. سلمان فارسی کا مشہور واقعہ, لیکن میں نے کہا کہ میں شروع کا حصہ بہت 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 جلدی جلدی پڑھوں گا کیونکہ آپ کا سنا ہوا ہے, آپ تو آپ کے بچے اور بچیوں کو بھی زبانی یاد. کہ ایک دن اللہ کے رسول مدینے میں مسلمانوں کا یہ ٹیسٹ لے رہے ہیں, قرآن کریم نے پیغمبر کی ایک ڈیوٹی یہ بتائی, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, ان کے نفس کو پاک و پاکیزہ کرتا ہے. تو مدینے میں بڑے مقدس اور نیک لوگ بھی, بدماش قسم کے لوگ بھی ہیں, شریف قسم کے لوگ بھی ہیں, لیکن بہت نیک اور مقدس لوگ بھی. تو پیغمبر نے ایک مرتبہ سروے کرنا چاہا مدینے کے لوگوں کا, مسجد النبوی ہر وقت بھری رہتی تھی. ایک بار سوال کیا کہ تم لوگ تو مجھ سے سوال کرتے ہو, آج میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اب لوگ ذرا سا شوق لگا کہ ہم رسول کے سوال کا جواب دیں, ہاؤ اٹس پاسبل. لیکن پیغمبر نے کہہ دیا تو ہم نہ بھی نہیں بول سکتے. یا رسول اللہ, پوچھی, کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہارے پوائز چہرے, بہت زیادہ عبادت کرنے والے ہیں, بہت زیادہ نماز اور روزہ کرنے والے, بہت زیادہ قرآن پڑھنے والے, یہ بتاؤ تم میں ایسا کون ہے کہ سارا سال ہر رات پوری رات عبادت میں گزارتا ہو, اور وہ کون ہے کہ جو سارا سال ہر دن روزے کے عالم میں ہو, یعنی جس دن حرام روزہ اس کو چھوڑ دیجیے. خیر پیغمبر نے یہ نہیں کہا کیونکہ پیغمبر کا مقصد بھی کچھ اور تھا. اور وہ کون ہے جو روزانہ ایک قرآن فل قرآن کے ختم کا ثواب لیتا ہو؟ بہت سارے نمازی, بہت سارے راتوں کو جاگ جاگ کے عبادت کرنے والے, مگر ہر رات ایک رات کبھی ایگزیمشن نہ ہو, یہ تو مشکل ہے. بہت روزہ رکھنے والے ہیں مگر پورا سال دن میں تلاوت, دو دن پہلے جو سنت نماز کے حوالے سے بات آئی تھی, تلاوت تو اس سے بھی زیادہ ایزی چیز کہ آپ دنیا کا ہر کام کرتے ہوئے تلاوت ساتھ ساتھ جاری رکھ سکتے ہیں. شہید دست غیب شیرازی کا تذکرہ کل آیا تھا, مگر ان کا ایک جملہ اسی کتاب میں, ہاؤ ٹو پروٹیکٹ یور سیلف فرام شیطان, استعاذہ, اسی کتاب میں انہوں نے بہت ہی شارٹ میں اپنی جوانی اور اپنے بڑھاپے کو کمپیئر کیا. وہ شیراز کے تھے. شیراز ایران کا ہمیشہ سے ایک بہت ہی الٹرا موڈ قسم کا شہر رہا, گرچہ شاہ چراغ کی زیارت, کتنی امپورٹنٹ زیارت اسی شیراز میں ہے, اور کتنے بڑے بڑے علماء, مجتہدین اور مراجع شیراز سے. لیکن بہرحال جن کو شیراز کی ڈیموگرافی پتا ہے تو معلوم ہے کہ شیراز بہت زیادہ الٹرا موڈ کیوں تھا. چھوڑ دیجئے, شیراز کے حالات بیان کرنے آیا ہوں کہ ولایت علی پہ بات کرنے. تو شیراز فرماتے ہیں کہ ایک ہماری جوانی تھی کہ شیراز جیسے شہر میں, جیسے کوئی کہے کہ پیرس جیسے شہر میں, وہ بھی آج سے 30 سال پہلے کا, کہا کہ شیراز جیسے شہر میں حالت یہ تھی کہ اگر کوئی بیکری والا ہے یا تندور والا ہے اور وہ اپنے تندور, یہ جو جملے میں کہہ رہا ہوں چونکہ آج کے مجلس کا سبجیکٹ یہی بنے گا آگے چل کر, تندور میں روٹی لگا رہا کمرشل, سب کو روٹیاں بیچے گا, تو وہ اس طرح سے تندور کے اندر روٹیاں نہیں بیک کرتا یا روٹی نہیں پکاتا, پہلے وہ وضو کرتا, پھر قرآن کی تلاوت کرتا ہے, پھر حدیث قصہ پڑھتا ہے, پھر روٹیاں شروع کرتا ہے کہ مومن کے دسترخوان پر جائے گی, مومن کے پیٹ میں یا میدے میں یا اسٹمک میں پہنچے گی, انتہائی پاک ہونا چاہیے, ظاہری اعتبار سے بھی پاک ہو اور اس میں اسپریچول اور روحانی طاقت بھی اس روٹی کے اندر آ جائے. جملہ آج کہہ رہا ہوں, شاید اس کی تھوڑی سی اس سے ریلیٹڈ وضاحت تو نہیں, تھوڑا اس کا بیان کل آئے گا, क्योंकि कल अली के उस लाल का मातम आने वाला कल कि उसके हवाले से कुछ जिक्र अली के जिहाद का होगा। मेरे मौला ने भी ये कहा तो माँ कला तो बाबा खैबर में कुव्वत जिस्मानिया, मैंने खैबर का दरवाजा जिस्मानी ताकत से नहीं उखाड़ा बल्कि कुव्वत रूहानिया, ये स्पिरिचुअल पावर है जिससे ये खैबर का दरवाजा उखाड़ा जा रहा। तो स्पिरिचुअल तहारत, स्पिरिचुअल तहारत भी एक चीज, एक तो होती है ये फिजिकल नजासत और तहारत कि 10 चीजें इस्लाम में नजीस हैं उनसे अपने आप को बचाओ और अगर वो आपकी बॉडी पे लग जाए तो अपने आप को पाक करो, और फिर एक होता है स्पिरिचुअल। तो अब वो शहीद दस्त गैब कह रहे हैं कि एक कमर्शियल आदमी जिसका कोई ताल्लुक कोई रिश्ता कोई रिलेशन इन लोगों से नहीं है जो उसकी दुकान में रोटी खरीद रहे हैं, मगर इतना उसको ख्याल है कि ये मेरी ड्यूटी कि मोमिन के दस्तरखान पर जो खिजा जा रही वो बिल्कुल हलाल हो और पाक और पाकीजा हो। घर के अंदर शहीद लिख रहे हैं, औरतें घर का काम कर रही हैं, चाहे कपड़े धो रही हों चाहे वैक्यूम लगा रही हों चाहे किचन में हो, कुरान की तिलावत और दुआएं चल रही हैं और ये सारे काम हो रहे हैं। देखिए ये स्पिरिचुअल तहारत, कपड़े पे यूरिन लग गया या ब्लड लग गया पानी डाल के पाक करना, और ये स्पिरिचुअल तहारत कि कपड़ा धोते वक्त तिलावत कुरान का सिलसिला जारी। और फरमाते हैं कि आज मेरा बुढ़ापा है जस्ट बिफोर इस्लामिक रेवोल्यूशन, और हालत यह है कि आज किचन के काम हो के घर के काम हो जब तक के म्यूजिक का कैसेट ना लगे, लोगों से गाड़ी ड्राइव नहीं होती है, लोगों से रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाया जाता है, औरतों से वैक्यूम नहीं लगाया जाता। अब अगर कोई औरत बची है वैक्यूम लगाने वाली, भाई शौहरों का काम ही यही है कि सारी खिदमत अंजाम दे बीवी की, लेकिन बहरहाल घर के काम नहीं होते जब तक कि म्यूजिक ना हो। मैंने ये वाकया कई बार पढ़ा है और अभी भी कहता हूं कि ये सच्चा वाकया है, ये कोई मैंने अपनी तरफ से एक सपोज करके एग्जाम्पल नहीं बना। जब न्यूयॉर्क में एक मोमिन ने आकर मुझसे कहा आज से 15 साल पहले कि मौलाना मुझसे नमाज नहीं पढ़ी जाती जब तक के बैकग्राउंड के अंदर म्यूजिक न बज रहा हो, नमाज से पहले मैं कोई गाने का कैसेट लगाता हूं और आवाज कम रखता हूं फिर नमाज। तब ये हालत हो गई। आज आफ्टर इस्लामिक रेवोल्यूशन काफी चीजें बेहतर हुई हैं लेकिन फिर लोग रिवर्स में जा रहे हैं। तो ये तो बीच में एक बात आ गई, क्योंकि आज की मजलिस का असल जो टॉपिक है वो इससे रिलेटेड है, आप आगे देखेंगे। तो तिलावत कुरान तो एक ऐसी चीज है कि आप दुनिया के आम अपने रूटीन काम करते हुए भी उसको जारी कर सकते हैं, मगर पैगंबर ने जो क्राइटेरिया सामने रखा वो तो इतना मुश्किल था कि हर दिन पूरे कुरान का खत्म, पूरा कुरान रोजाना डेली। न सिर्फ ये कि लोगों ने दिल ही दिल में कहा कि ना हम नहीं, बल्कि ये भी कहा कि ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता। सलमान खड़े हो गए कि आना या रसूल अल्लाह, ये तो बहुत जल्दी जल्दी मुझे पढ़ना है, आपको जबानी याद है, जबानी आपके बच्चों को याद है। कि सलमान ने कहा मैं, पैगंबर ने कहा सलमान लोगों को ऑब्जेक्शन हो रहा है तुम कैसे, कहा कि या रसूल अल्लाह आपने फरमाया था ना। अच्छा आप मेरी मजलिस सुनिए, मुझे मजलिस सुनाइए नहीं, बाद लोगों के बीच में कमेंट चलते हैं मैं जरा डिस्टर्ब हो जाता हूं। तो खुलासा यह है कि मैं आपकी बातें सुनूंगा भी मजलिस से पहले और मजलिस के बाद, नमाज तक में एक ऑर्डर है। नमाज तक में एक हुक्म है कि जब जमात की नमाज पढ़ो तो पेश नमाज को सुनो, पेश नमाज को सुनाओ नहीं मकरूह है, पीछे नमाज पढ़ने वालों के लिए नमाज की कोई चीज भी इस तरह से पढ़ना कि पेश नमाज के कान तक आवाज पहुंचे। कुनूत, एक मर्तबा शोर मच जाता है मस्जिद में जब जमात नमाज में कुनूत का वक्त आता है, कुनूत हो रुकू हो सजदा हो तशहुद हो सलाम, तुम्हें उसे सुनना है उसे सुनाना नहीं है। तो बात यह हो गई कि मैं 2-3 दिन से जरा डिस्टर्ब सा हो रहा था, तो मैंने कहा कि मैं वजाहत कर दूं कि वाई मैं डिस्टर्ब क्यों हो जाता हूं, ये एक प्रॉब्लम है। तो खुलासा यह है और ये रहेगा प्रॉब्लम कुछ साल और फिर खत्म हो जाएगा। मेरे दो उस्ताद बहुत क्लोज थे, दोनों आखिर में जाके तकरीबन हियरिंग पावर उनकी खत्म हो गई थी, उनको कुछ सुनाई नहीं देता था, फिर जो दिल चाहे आपका कीजिएगा। अभी 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 तो फिर भी मेरे कान थोड़े थोड़े काम कर रहे हैं। तो मैं बात को मुकम्मल करूं कि सलमान लोगों को इतराज कहा या रसूल अल्लाह मैं हर रात को सोने से पहले वुजू करता हूं। और आपने कहा जो वुजू करके सो जाए उसकी सारी रात इबादत लिखी जाएगी, वो सो रहा है लेकिन वुजू, यानी एक तहारत। वुजू फिजिकल तहारत का नाम नहीं है, स्पिरिचुअल तहारत का नाम। चुनांचे अगर आपके जिस्म के ऊपर ब्लड लगा हाथ पर और आप वुजू करेंगे, वुजू ही गलत है, वुजू उसको पाक नहीं करेगा, वुजू गलत हो जाएगा। पाक होना चाहिए आपको ऑलरेडी, फिर वुजू होता। पाक से मतलब अभी यहां आजाए वुजू। तो कहा कि हर रात को सोने से पहले, रात को नींद स्पिरिचुअल तहारत के साथ चाहिए, लेकिन ये लफ्ज मैंने बहुत कह दिया, फिलहाल खत्म करता हूं, मैं हर रात को सोने से पहले वुजू करता हूं। आपने कहा जो महीने में जो एक नेकी करे, बल्कि आपने क्या कहा कुरान में, मंजा बिलासना फलहू अशरम सालिहा, बहुत तेज पढ़ रहा हूं, कि एक नेकी करो 10 टाइम्स तुम्हें सवाब मिलेगा। चुनांचे मैं हर महीने 3 दिन रोजे रख लेता हूं, 30 रोजे मल्टीप्लाई होके कन्वर्ट होके 30 बन जाते हैं, पूरा साल रोजे का सवाब। आपने कहा कुल हुवल्लाह का सूरा 1/3 कुरान है, एक बार तिलावत करो तो 1/3 का, 2 बार तिलावत करो 2/3 का, 3 बार तिलावत करो पूरे कुरान का सवाब मिलता है। मैं दिन में एटलीस्ट 3 बार सूरह कुल हुवल्लाह की तिलावत करता हूं। मजमा खामोश हो गया। तब ये जुमला मैं कहता हूं कि ये वो मुसलमान थे जो रसूलुल्लाह के जमाने में थे, डायरेक्ट रसूल की जियारत कर रहे थे, डायरेक्ट रसूल से नॉलेज रहे थे, मगर हालत यह है कि सलमान के ईमान को यह ना पहचाने। जो सलमान के ईमान की मारिफत ना करे, वो कुल्ले ईमान की मारिफत कहां से हासिल करेगा। मगर अब देखिए, बिल्कुल ऐसा लगा कि एक स्पीकर स्पीच करते करते एकदम उसने अपना टॉपिक या ऑडियंस चेंज की। अभी तक की जो बात थी इसका मोमिन से कोई ताल्लुक नहीं, यहां मुसलमानों को समझाना, लेकिन अब बात सलमान को बैठ जाना चाहिए। पैगंबर ने सवाल किया, सलमान ने रिप्लाई दिया, लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, सलमान ने उसका भी जवाब दिया, खत्म हो गई बात। लेकिन सलमान ने अपनी स्पीच को कंटिन्यू रखा और अब लग रहा है कि सलमान चेंज कर दिया ऑडियंस को, अब गैरों से बात नहीं, अब हमसे और आपसे बात। हम सलमान वाले हैं, सलमान हमारे वाले हैं, जन्नत में सलमान के गले में बाहें डाल के हम लोग जा रहे होंगे। ज़ुहूर इमाम के बाद सलमान भी हमारे साथ इमाम जमाना की आर्मी को ज्वाइन करेंगे। सलमान हमारे हैं, हम सलमान के हैं। तो खुलासा ये कि अब सलमान की बात, कहा कि या रसूल अल्लाह, और मुझे ये भी याद है कि आपने ये फरमाया था कि आए अली मसलो का मसलो तौहीद फिल कुरान, तेरी मिसाल तो ऐसी है जैसे कुरान में कुल हुवल्लाह की मिसाल, तू जस्ट लाइक कुल हुवल्लाह, जैसे कुरान में कुल हुवल्लाह है ऐ अली तू वैसा ही। यानी खुद सलमान ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये जुमले भी सलमान के हैं, जो एक मरतबा कुल हुवल्लाह की तिलावत करे 1/3, 2 बार तिलावत करे 2/3, 3 बार तिलावत करे कुल्ले कुरान मिलता है। आए अली जो जबान से तेरा नाम लेता है उसे 1/3 ईमान मिलता है, जो दिल में भी तुझसे मोहब्बत करता है जबान के साथ दिल भी बोला, जब दिल बोलता है तो 2/3 ईमान मिलता है। लेकिन जो जबान से तुझसे मोहब्बत करे, दिल में तेरी मोहब्बत रखे, हाथ पैरों से तेरी सीरत पे अमल करके दिखाए, उसे कुल्ले मोहब्बत और कुल्ले ईमान मिला करता। कल को कंप्लेन थी लोगों की कि बहुत लंबी मजलिस हो गई, इसलिए मैं मैटर उतना ही देना चाह रहा हूं लेकिन कम टाइम में, इसलिए जरा मैं फास्ट हूं। तो सलमान बता रहे हैं कुल्ले मोहब्बत किसे कहते हैं, जबान कहे या अली 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 जैसे आप कह रहे हैं, और मोहब्बत मुकम्मल कंप्लीट मोहब्बत किसे कहते हैं, दिल से भी अली अली की आवाज हर वक्त निकले। मौला का एक जुमला भी है कि अगर मुझसे मोहब्बत करने वाले की बॉडी को 70 तलवारों से टुकड़े टुकड़े कर दो तो एवरी पीस वो अली अली कह रहा होगा। लेकिन जब जबान और दिल के साथ पूरा जिस्म भी अली की सीरत को फॉलो कर रहा हूं, वहां जाके अली की मोहब्बत मुकम्मल होती है, क्योंकि तो बड़ी सरप्राइजिंग चीज है ये जबान। जबान इसका क्या वेट होगा, वेट स्केल पे अगर आप रखें, और दिल, दिल कहें दिमाग कहें जो भी कहें, इसको आप दोनों चीजों को मिला के स्केल के स्केल पे रखें, और फिर अपनी पूरी बॉडी को स्केल पे रखें, भाई आजकल दुनिया में वेट होता है किलो के जरिए, यहां तो पता नहीं किलो चलते हैं कि स्टोन चलता है कि क्या चलता है, मुझे यहां का सिस्टम नहीं मालूम। खुलासा यह है कि वेट कर, छोटी सी जबान जो हमारे यहां आजकल के मुहावरे में हम कहें तो चंद ग्राम की जबान, वो अली का है, और पूरा जो जिसम है 100 किलोग्राम का, वो दुश्मन है अली की सीरत को फॉलो कर रहा हो। भाई इस्लाम में पहला आदमी कौन है जिसने अपनी दाढ़ी शेव की? अब ये मुझसे नहीं पूछी। कभी कभार लोग कह देते क्या दाढ़ी दाढ़ी लगा रखी है, दाढ़ी तो यजीद की भी थी, यजीद की दाढ़ी नहीं थी। ये आपको गलतफहमी है या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। पहला आदमी इस्लाम में कौन है? अब एक मिसाल दे रहा हूं, पूरा इस्लाम दाढ़ी नहीं है लेकिन स्टार्ट यहां से होता कि इतनी सी जबान, तो अली का नाम ले और पूरा जिस्म जो है वो अली के अगेंस्ट चले, औरत है सर पे चादर तक नहीं और अली वाली नहीं। मैं ये नहीं कहता कि नहीं अली वाली, लेकिन मैं कहता हूं मोहब्बत अली इसकी अभी 2/3 कंप्लीट नहीं है, जबान और दिल 2/3 कंप्लीट मोहब्बत अली नाम है लेकिन तीसरे नंबर पर। ऐसा ना हो कि चल रहा है सीरत अली पर दिल में अली का दुश्मन है। हमने तो कितने ही ऐसे नमाजी भी देखे जो करबला में शोर मचा रहे थे, जल्दी से हुसैन का सर काटो हमारी नमाज का वक्त निकला जा रहा, ऐसे नमाजी भी हमने देखे। वो तीसरे स्टेज पर आता है जबान और दिल के साथ, और इसी कंप्लीट मोहब्बत का नाम है विलायत। जबान से कहा या अली, ये मोहब्बत, दिल के अंदर से भी दिल ने भी कहा या अली मोहब्बत, और विलायत कब बनती है? जब जबान और दिल के साथ इंसान की पूरी जिंदगी अली के हिसाब से हो, तो ये है वो विलायत जो इस्लाम में सबसे आखिर में आई, बिल्कुल आखिर में विलायत अली आई। इसके बाद अब इस्लाम के पास कुछ और नहीं रहा, विलायत अली यहां से शुरू हुई। मगर हमारे यहां दुआओं की किताब में एक दुआ है, दुआए अदीला, अदीला, और ये दुआ नहीं है, दुआए अदीला जो है ना, ये तो समझिए एक पूरा ग्रुप है दुआओं का, जैसे रोजी की दुआ, रोजी रिस्क, अब एक दुआ नहीं है कई दुआएं, बीमार की सेहत की दुआ एक नहीं है कई दुआएं, अदीला एक दुआ नहीं है कई दुआ, जिसके अंदर एक बहुत लेंदी दुआ या अदीला भी है कि एटलीस्ट शबे जुमा पढ़ा करो, एक मीडियम साइज की दुआ या अदीला भी है रजी तो बिल्लाह रब्बन व बे मोहम्मद नबीन व बे अली इमामा से आखिर तक कि एवरी नमाज के बाद पढ़ा करो, और एक सबसे शॉर्टेस्ट दुआ या अदीला भी है या मुकल्लब अल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक, ये शॉर्टेस्ट दुआ या अदीला। तो कहते किसे हैं दुआ या अदीला, चाहे वो बड़ी वाली हो, चाहे वो स्मॉल वाली हो, चाहे वो मीडियम साइज की हो, हर तरह से बताई कि वीक में एक बार पढ़ो, डेली 5 दफा पढ़ो, और ये शॉर्ट वाली जितनी बार पढ़ो। ये दुआ या मुकल्लब अल कुलूब कब आई? जब मौला ने कहा कि आखिरी जमाने में लोगों का ईमान बहुत ज्यादा ज़ाय होगा, ईमान ईमान, मुनाफिक की बात नहीं कर रहे, काफिर की बात नहीं कर रहे, मोमिन की बात कर रहे, जिसके पास ट्रू ईमान है कहीं खत्म हो जाएगा। सुबह का मोमिन है शाम को मोमिन नहीं रहेगा, शाम का मोमिन है नेक्स्ट मॉर्निंग मोमिन नहीं रहेगा। तो अब मासूमी खाली प्रॉब्लम नहीं बताते, सोल्यूशन भी बताते। किसी ने कहा कि मौला फिर ईमान को बचाने का तरीका क्या? का दुआ अदीला पढ़ो। अब वो घबराया कि दुआ अदीला का टाइम नहीं है, कहा ये शॉर्टेस्ट दुआ या मुकल्लब अल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक। और वो जो इमाम ने ये मौला की हदीस, वो इमाम की हदीस कि देखो ईमान की दो किस्में, एक आके कभी नहीं जाता, एक आता है और चला जाता। खास तौर पर ये जुमला याद रखिए, स्पेशली वक्त आखिर जब आदमी मर रहा होता है ना, तो उसके सराहने मौला के अलावा, मौला की बात नहीं हो रही है, दो शख्सियतें आती है, एक मलकुल मौत आता है तो ऑफिशियल ड्यूटी पर आया, और दूसरा शैतान आता वो भी ऑफिशियल ड्यूटी पर आता। मलकुल मौत का काम है रूह निकालना, शैतान का काम है लोगों के ईमान को निकालना। पूरी जिंदगी ट्राई की शैतान ने, कल भी आपने वाकया शैतान का ऐसा सुना कि बाद में मुझे लगा कि बहुत ज्यादा आपने सुना, एक आध मर्तबा की अलग बात, बहुत सुना। मैं वाकया पढ़ रहा था, नीचे से फिर रनिंग कॉमेंट्री थी कि इसके बाद क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ। खैर, तो खुलासा यह है कि शैतान भी आया, वो भी अपनी ऑफिशियल ड्यूटी पर अल्लाह की तरफ से नहीं, जो उसने खुद एक जिम्मेदारी ली कि एक एक बंदे को बहकाऊंगा ला अग्वयन्नहुम अजमाईन इल्ला इबादक मिनहुम अल-मुखलिसीन, एक एक तो वो आखिरी वक्त में एक फाइनल ट्राई करता। तो वो शैतान भी आता है, इमाम ने कहा कितने लोगों का ईमान आखिरी वक्त में शैतान लेके चला जाता। मलकुल मौत रूह को लेके गया, शैतान ईमान को लेके गया। दुआ दिला पढ़ो, पूरा इस्लाम का इतना बड़ा टॉपिक है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब, आयत आ गई कि अय खुदा हमारे ईमान को बचा लेना। अब ईमान, ईमान मुकम्मल किस चीज से होता है? विलायती अली, ईमान चला जाता है। इसका मतलब यह कि यह तौहीद चली गई, या रिसालत चली गई, या विलायत चली गई। तो विलायत को मान लेना इनफ नहीं है, विलायत को बचाना भी जरूरी है, विलायत का प्रोटेक्शन भी जरूरी है। कल की मजलिस कुछ ऐसा ही थी ना कि फटी हुई या कटी हुई जेब में कभी पैसे नहीं रखिएगा, आप पैसे रखते जाएंगे वो गिरते चले जाएंगे, पीछे वालों का फायदा है आपका नुकसान है। लेकिन ये बात अकीदे के लिए भी है और अमल के लिए भी। विलायती अली मिल गई, हजार हजार शुक्र के सिजदे करें कि अल्लाह ने आपको अली की विलायत अता की। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सकीना बिविलायती अली, सारी तारीफें अल्लाह की जिसने हमें विलायती अली वाला बनाया। लेकिन अब इस विलायती अली को बचाना भी, आपको दौलत मिली, अच्छा बिजनेस मिला, आप क्या कहते खुदावंदा काम खत्म हो गया? नहीं, खुदावंदा तूने एक अच्छा जॉब दिया या बिजनेस दिया, अब ये इसी तरह बरकत के साथ चलता रहे। औलाद नहीं थी, आपने औलाद मांगी मांगी पर खत्म, अल्लाह तेरा काम नहीं, इसको बचाना भी। आज मिल गई और कल मर गया वो बेटा तो और ज्यादा गम होगा। तो जब विलायत के पास आए ही नहीं, वो अगर जहन्नम में डाले गए तो फिर भी वो बर्दाश्त कर लेंगे, जो विलायत कबूल करके फिर विलायत से निकल गए। तो विलायत को कैसे बचाया जाए, ये हमारी पहली जिम्मेदारी। अब विलायत और हमारी जिम्मेदारियों में कि कैसे बचाया जाए, अब आइए इसमें, जो दो दिन मेरी मजलिस जिस सब्जेक्ट पे थी अब उसको एक्सप्लेन किया जाए। अच्छा, अब आज अगरचे जरूरत तो नहीं है, कल से गम की बड़ी रातें शुरू हो रही हैं, लेकिन आपको हैबिट हो जाए इसलिए मैं आज से ही स्टार्ट कर रहा हूं कि जो मजमा है जरा आगे आ जाए, जरूरत नहीं है लेकिन आगे आ जाए। अब सुनिए, विलायत, विलायत को खतरा कहां से, क्या क्या चीजें विलायत को खत्म कर सकती। ओनली वन फैक्टर नहीं है, बहुत सारी चीजें जो विलायत को खत्म कर सकती, और इनमें से आज एक चीज पहले आ चुकी है, हसद, लेकिन जरा सा मुख्तसर राब है आज की मजलिस में जो चीज बताना। विलायत मिल गई, गदीर के ऐलान पे हमने अमल की, पूरी विलायत ले ली। अब मसला यह है कि मरते दम तक, शैतान के आने तक नहीं, शैतान के आने के बाद भी जब आखिरी वक्त में आए उससे आप फाइट करेंगे और विलायत को बचाएंगे। क्या क्या चीजें ऐसी, यहां पे एक बहुत मशहूर स्टोरी, एक जुमला आका हुसैन का, फिर बात आगे बढ़ेगी। शहर मदीना है और वो जमाना है जब रसूलुल्लाह जिंदा है, यानी ये सिटी ऑफ रसूल है। नाम ही मदीने का मतलब ही है कि सिटी ऑफ प्रॉफिट, सिटी ऑफ रसूल, यानी मदीने रसूलुल्लाह। रसूल तो हमेशा से थे, आम लोगों के इतबार से बादशाह भी, मक्का ऐसा नहीं, वहां रसूल, अल्लाह की तरफ से तो रसूल हैं। टॉर्चर, जुल्म, तशद्दुद, मसायद, कूड़ा फेंकना, कांटे बिछाना, ऊंट की ओझड़ी रखना, पत्थर मारना, मदीना ऐसा नहीं, अनडिस्प्यूटेड किस्म के पैगंबर, मदीने के बादशाह भी। चुनाचे जब लोगों ने यह देखा कि एक दिन रसूलुल्लाह मदीने की एक स्ट्रीट से गुजर रहे हैं और करीब में एक छोटा सा प्ले ग्राउंड है, वाकया बहुत मशहूर है इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं, पैगंबर वहां से गुजरे, देखा कुछ बच्चे शाम का वक्त है, खेल रहे हैं। बच्चों पर खेल ही अच्छा लगता, हम बच्चों से ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो हमारी तरह से सोबर बन के बैठे, तो अब वो खेल रहे हैं। रसूलुल्लाह गए उनके बीच में। तीसरी मजलिस थी जिसमें मसायब से कुछ पहले एक जुमला आया था, इस्लाम को सर्विस जब देना है तो मर्दों में भी, औरतों में भी, बच्चों में भी, जवानों में भी, बूढ़ों में भी, सब में हमें काम करना। तो ये तबलीग का जरिया है कि बच्चों से भी क्लोज होना। पैगंबर जहां बच्चे को देखते हैं वहां जाते हैं। चुनाचे दो चार बातें उनसे करते हैं, वो उन्हीं के लेवल पे जाके वो खुश होते हैं, पैगंबर गए। अच्छा बच्चों को भी मालूम है ये रसूलुल्लाह, हर घर में पैगंबर का बड़े रिस्पेक्ट और एहतराम के साथ जिक्र किया जाता। वो भी दौड़ के आ गए, एक एक करके पैगंबर सबसे मिले, एक 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 जुमला को कहा। एक बच्चा था जो बिल्कुल कोने में खड़ा हुआ, वो नहीं आया रसूल के पास, रसूल उसके पास चले गए। उसने देखा एक पैगंबर की शान में गुस्ताखी करता हुआ, बुरा भला कहता हुआ, गालियां देता हुआ, फाउल लैंग्वेज इस्तेमाल करता हुआ, अब्यूज करता हुआ भागा हुआ। मक्के में अगर ऐसा सीन हो तो शायद मुसलमान मजबूरन खामोश हो जाएं कि अबू जहल, अबू लहब, वलीद, उतबा की हुकूमत, लेकिन वहां भी मुसलमान बोलेगा ये तो हमारा अपना सिटी, ये तो रसूलुल्लाह का सिटी हमारे सामने, ये इतनी गुस्ताखी करके जा रहा, लोग उसको पकड़ने के लिए दौड़े ताकि उसको पकड़ा जाए, पनिश करें। पैगंबर ने रोक दिया, कहा कि इस बच्चे की गलती नहीं है, इसके बाप की गलती है। अब मजमा इसलिए बहुत ज्यादा सरप्राइज कि उसके बाप को हर आदमी जानता। पहले जमाने के सिटी कितने बहुत बड़े छोटे से होते थे, जो आप लोग हर शहर को गांव कह देते हैं ना, पेरिस भी गांव है, लंदन भी गांव है, न्यूयॉर्क भी गांव है, पहले जमाने में वाकई शहर गांव होते थे। उर्दू में तो गांव बहुत ही छोटी जगह को कहते हैं, तो हर आदमी एक दूसरे को जानता, सब जानते हैं इसका बाप, इंतहाई मोहब्बत करने वाला रसूल से। और पैगंबर कह रहे हैं इसकी गलती, लोग पैगंबर इस वक्त मैसेज देना चाह रहे हैं। देखा कि लोग हैरान हो, परेशान हो गए, कहा चलो उसके घर पहुंचे। अच्छा वो तो बड़ा खुश हो गए। नऊज़ु बिल्लाह शायद ये जुमला मिंबर के लिए अच्छा नहीं कि जो अब मैं कह रहा हूं, कि उसका तो एक किस्म का जैकपॉट खुल गया, पैगंबर उसके घर खुद चल के आ रहे हैं। रसूलुल्लाह जिनसे मोहब्बत भी करता है, जिनको वो कायनात का हुक्मरान भी मानता, ये भी नहीं कि दावत दिए, खुद से आ रहे हैं। खुद से आना कितनी खुशी होगी आपको, नहीं होगी। आप कहेंगे कि या रसूल अल्लाह कि आपने पहले से टाइम लिया था, हम अमेरिका में रहते हैं, टाइम लिए बगैर तो अपने बाप और मां से भी ना मिले आप क्या, लेकिन आप आए तो एक गांव अहमदाबाद से है ना, कितने खुश होंगे। एक आलिम आता है तो खुश हो जाते हैं, मुश्तहिद आ जाए अगर सिस्तानी, आप कितने खुश हो या रसूल अल्लाह। वो बाप की खुशी के मारे अजीब हालत, लेकिन उसने फिर यह महसूस किया कि मजमा बहुत सीरियस है, जितना ज्यादा मैं इमोशनल हो रहा हूं मजमा बहुत सीरियस। अब रसूल से तो बात नहीं की, किसी से पूछा हुआ क्या। उसने बताया तुम्हारे बेटे ने इस तरह मदीने के बाजार में अपने और गैर मुसलमान और यहूदी उनके सामने रसूल की यह इंसल्ट की। अब जो उसे गुस्सा आया, घर के अंदर गया, तलवार लेके आया कि मैं अपने हाथ से अपने बेटे की गर्दन काट दूंगा, नहीं चाहिए ऐसी औलाद जो पैगंबर की शान में गुस्ताखी करे, नहीं चाहिए। और गुस्से के आलम में बेटे को ढूंढने जा रहा, पैगंबर ने कहा लेकिन गलती उसकी नहीं है, गलती तेरी। अब उसे भी जब आम सहाबियों को शौक लगा, उसे भी गोया ब्रेक लगाया, एकदम रुक गया। या रसूल अल्लाह मैंने अपने घर में हमेशा से आपकी मोहब्बत को बाकी रखा, सुबह शाम मेरे घर में आपका जिक्र होता। मसला यही है कि हम और आप भी यही समझते हैं कि सुबह शाम जिक्र कर लो अपने घर में तो ये मोहब्बत है और ये एनफ है। ये मोहब्बत तो है लेकिन एनफ, हम भी यही समझते हैं। मौला का नाम ले लिया, आका हुसैन का नाम ले लिया, जिसे किसा पढ़ ली, मासूमीन औरतें होंगी तो कोई शहजादी की कहानी वगैरह पढ़ ली, हम समझते हैं ये जिक्र होता है सुबह शाम, ये एनफ है, जरूरी है, एनफ नहीं। उसने भी यही कहा या रसूल अल्लाह मेरे घर में डेली आपका जिक्र होता, हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं अपनी एक्टिविटीज में जब तक कि आपका जिक्र ना हो। घर में आते हैं रात को बिस्तर पे सोने नहीं जाते, वो सारी बातें छोड़े, और आप कह रहे हैं मेरी गलती। शुरू से मैंने इस बच्चे को ये सिखाया जैसे आप अपने बच्चों को कसीदे, सलाम, नोहों, मरसियों की शक्ल, अली की मोहब्बत और हुसैन की, کہ غم اور عذا کا پیغام دیتے ہیں. اس نے بھی کہا کہ میں نے دیا. پیغمبر نے کہا ایک بات بتاؤ. دیکھیں لمبا چوڑا آرگومنٹ فائدہ نہیں. تم جو پیسہ گھر میں لے کے آتے ہو جس سے تمہارے گھر کا خرچہ چلتا ہے پورا حلال ہے؟ اب وہ تھا بزنس مین. جاب والا تو شاید پھر بھی کبھی کہہ دے لیکن بزنس مین, بزنس مین کے پاس ہمیشہ سے ایکسکیوز, یا رسول اللہ میں پوری کوشش تو کرتا ہوں لیکن آپ کو معلوم ہے بازار مدینہ میں میرا بزنس ہے, مارکیٹ کے اوپر مدینہ کی مارکیٹ میں سب یہودیوں کا ہولڈ تھا, ان سے کمپٹیشن ہے. اگر حلال و حرام کا اتنا اسٹرکٹ خیال کرنے لگا تو گھر میں تو فاقے ہو جائیں گے, کھانے کو کچھ نہیں ملے گا. اللہ کا وعدہ ہے کہ میری روزی اور رزق میری ذمہ داری ہے تمہاری نہیں. لیکن ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو چھوٹے موٹے اللہ ہیں نا, تو اپنے گھر کی حد تک تو یہ ہماری ڈیوٹی ہے. تو اگر حلال و حرام کا خیال رکھا تو یا رسول اللہ ہماری انکم کم ہو جائے گی, گھر کا خرچہ بھی پورا نہیں ہوگا. کسے کہتے ہیں لوگ گھر کا خرچہ پورا نہ ہونے, لوگ آتے ہیں میرے پاس کہ مولانا آپ نے پچھلے سال ایک دعا پڑھی تھی ممبر سے, بہت سے لوگ کہتے ہیں فائدہ ہوا روزی کی رزق کی, ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ. میں نے کہا اللہ کا وعدہ ہے آپ کو رزق دینے کا, آپ کے گھر کا کھانا, آپ کے گھر کے کپڑے, ہر سال مرسیڈیز کا نیا ماڈل ہوگا, یہ اللہ کا وعدہ نہیں. اور نہ ہی سورہ واقعہ یا روزی کی کسی دعا کے ساتھ یہ کہ یہ پڑھو. آج تو ہمارے یہاں رزق کا کنسیپٹ ہی چینج ہو گیا, بہت بڑا مکان ہونا چاہیے, بہت بڑا اسکرین والا ٹی وی ہونا چاہیے, لیٹسٹ ماڈل کا آئی فون 6 پلس کون سا ابھی آنے والا ہے یا ابھی آ گیا ہے وہ ہونا چاہیے. رزق کی دعا اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ بھائی کھانا تو مل ہی جاتا ہے, کھانا تو مل ہی جاتا ہے, یہ کوئی تھوڑی رزق کی چیزیں. اب وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اگر میں حلال حرام کا خیال کروں, کاروبار ہے جھوٹ بھی بولنا پڑتا, کبھی کوئی چیز دکھا کے کوئی اور چیز. دیکھیے اگر غیروں کے بنائے ہوئے قانون کی وجہ سے ہم شریف ہو جائیں تو اسے شرافت نہیں کہتے ہیں جی, وہ تو لا کی وجہ سے مجبور ہیں. بمبئی کی مارکیٹ اور احمد آباد کی مارکیٹ میں بھی اتنا ہی خیال کرتے ہوئے بزنس کرے تو سمجھا جائے گا. لیکن خیر بات کو میں بہت پھیلا رہا ہوں, ٹائم ویسے ہی کم ہے. پیغمبر کا ایک جملہ تھا کہ باقی باتیں چھوڑ. آرگومنٹ تو اگر آدمی کرے تو ساری رات کرے گا, ساری زندگی کرے گا, بس ایک بات یاد رکھو, جب کسی کے اسٹمک یا پیٹ میں حرام روزی جاتی ہے یا حرام لقمہ جاتا ہے یہ اس کو دشمن رسول اور دشمن امام بناتا. اہل بیت کی دشمنی اور رسول اس سے پہلے ہیں. یہ رزق حرام سے شروع ہوتی ہے, حرام لقمے سے. کیونکہ دیکھیے اسپریچولی ہمیں پروٹیکٹ کرنے والی تین بہت اہم چیزیں, نماز, روزہ, دعا. وستعین بالصبر والصلاۃ. بھائی جب کبھی کوئی پرابلم آ جائے, یہ تو قرآن کی آیت ہے نا, تو روزے اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو. یہ قرآن کی آیت ہے, اللہ سے مدد مانگو روزے اور نماز سے. اور دعا تو ہر ایک کو پتا ہے کہ دعا ترسل مومن, مومن کو بچانے والی چیز دعا ہے. تین چیزیں ہیں نا. اور یہ حدیث بھی آپ نے بار بار سنی, من اکل لقمتا من الحرام, جو حرام کا صرف ایک لقمہ کھاتا ہے ایک, 40 دن, نماز قبول نہیں ہے, روزہ قبول نہیں ہے, دعا قبول نہیں. سارا تو پروٹیکشن کی چیزیں آپ نے خود توڑ کے رکھ دی اپنے گھر سے, تو اب شیطان انٹر ہوگا کہ نہیں انٹر ہوگا؟ آپ کی نماز, آپ کا روزہ, آپ کی دعا شیطان کو روک رہی تھی گھر میں آنے سے, تو آپ نے تو خود ہی اس کے لیے گھر کا دروازہ کھول کے انٹری پوائنٹ بنا دیا. 40 دن صرف ایک لقمے حرام کی بات ہو رہی ہے, جس کے یہاں پورا دن حرام کھایا جاتا ہے, جس کا پورا جاب ہی حرام کا جاب ہے, جو مثلا سیل ہی کرتا ہے الکوہل یا شراب. اب باتیں فقہی مسائل ابھی نہیں ہیں, بہت اہم لیکن ابھی نہیں, ابھی تو یہ واقعہ پورا کرنا. رسول نے ایک چیز بتائی. اب آئیے کربلا میں آقا حسین. عاشور کے دن آقا حسین نے بہت ہی فیمس خطبہ دیا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بہت اہم خطبہ دیا, کیونکہ آقا کا ہر خطبہ اہم. فیمس, فیمس اس لیے کہ اس کے دو جملے ہمارے ہاں بہت مشہور. جو کمپلین میں نے مجلس کے شروع میں کی, وہی کمپلین مجلس کے آخر میں کر رہا ہوں, کیونکہ اب مصائب کا وقت بہت قریب آ گیا. اور وہ یہ ہے کہ ایسے ایسے میسیجز جو ایسی حدیثوں میں ہے جو آدھی ہر ایک کو یاد ہے, उसी में आगे चल के मैसेज है, वो हिस्सा हर एक भूल जाता भाई। कोई ऐसी हदीस पढ़ी जाए जो आपने कभी नहीं सुनी हो, तो जरा ग्रेस मार्क देने को दिल चाहता है कि बेचारा आलिम तो है नहीं, मुश्तहद तो है नहीं, हदीस नहीं सुनी होगी, लेकिन जो मशहूर है हर एक को याद है उसी में मैसेज है। चाहे वो सलमान का वाकया हो, चाहे आका हुसैन का ये खुतबा हो, ये वाला खुतबा जिसका एक जुमला मैं कोट करने जा रहा हूं, कितना फेमस है इसके दो जुमले, अल मौत औला मिन अल आर, इज्जत की मौत जिल्लत की जिंदगी से बेहतर। करबला में आका हुसैन का जुमला किसने नहीं सुना, ये नौजवानों की टी शर्ट के ऊपर ये जुमले लिखे हुए होते हैं, क्या आका हुसैन ने कहा, इज्जत की मौत जिल्लत की जिंदगी से बेहतर, और है हाथ में न जिल्ला, मैं और जिल्लत कबूल करूं हो ही नहीं सकता। उसी खुतबे का एक जुमला ये भी तो है कि लश्कर यजीद को देख के आका हुसैन इरशाद फरमा रहे हैं कि पहले मुझे पहचानो मैं कौन हूं, अपना इंट्रोडक्शन कराए। ये हम जैसा गुनाहगार नहीं है, या आये तफहीर से तहारत की सनद लिए हुए मासूम इब्ने मासूम है, वो अपना तारुफ करा रहा है। स्पीकर की अपनी स्पिरिचुअलिटी उसके जुमलों में असर पैदा करती। हुसैन से बड़ा कायनात का स्पीकर कौन है, हुसैन से ज्यादा पाक और पाकीजा कौन, और फिर पूरा इंट्रोडक्शन, अपनी फैमिली बताई कौन, अपने फजाइल बताए कि मदीने में नाना लश्कर यजीद में रसूलुल्लाह के जमाने के भी कुछ लोग थे कि तुमने अपनी आंख से देखा होगा। फिर एक बहुत ही जर्नलाइज बात कही कि अच्छा मुझे एक आम मुसलमान समझ लो, तो आम मुसलमान को कब कत्ल किया जाता, क्या ऐसे गुना उनमें से कौन सा मैंने किया, सारी बातें कर ली। फिर आका ने एक जुमला कहा और वापस हो गए। आका ने कहा मैंने सब कुछ बता दिया, फिर भी मुझे पता है तुम पे कोई असर नहीं होगा, क्यों, लकद मुलियत बुतूनुकुम मिनल हराम। रीजन ये नहीं कहा कि तुम तो हो ही मेरे दुश्मन, ये नहीं कहा, तुम पर कोई असर नहीं होगा। हुसैन जैसे मासूम की स्पीच सुनकर भी, फजाइले हुसैन सुनकर भी, हुसैन के फैमिली ट्री को सुनकर भी, अनबन मोहम्मद अनिल मुस्तफा, अनबन खदीजत अल कुबरा, अनबन वली अनिल मुर्तजा, पूरा तारो। लेकिन रीजन ये होना चाहिए ना कि लश्कर यजीद पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए कहीं तो है ही हुसैन के दुश्मन। कहा नहीं, तुम पर असर इसलिए नहीं होगा कि तुम्हारे पेट हराम से भरे हुए। क्या दुश्मनाने अहले बैत चेंज नहीं हुए, कन्वर्ट नहीं हुए, रिवर्ट नहीं हुए हैं? क्या बड़े बड़े दुश्मन मोहब्बत अली और मोहब्बत अहले बैत उनके दिल में नहीं पैदा हुई है? हुई है। हुर की मिसाल ही करबला में हमारे सामने है, लेकिन आका बता रहे हैं कि रीजन ये नहीं है तुम दुश्मन हो, दुश्मन चेंज हो जाता, रीजन ये है कि तुमने हराम खाया, और जो हराम खाता है, नमाज रोजा दुआ 40 दिन गई वो फिर भी छोटी बात है, वो ऐसा हो जाता है कि रसूल ने कहा, रसूल और इमाम की शान में गुस्सा उनका दुश्मन, और करबला में आका हुसैन ने कहा वो ऐसा हो जाता, जो मैं कह रहा था कि शायद हो जाऊं, अल्लाह करे कि ना हो, लेकिन हो जाऊं बहरा, इमाम की तकरीर भी सुनेगा और कोई असर नहीं होगा, रिस्क हराम। अब आप में से हर एक इसे बचने की कोशिश करता, यानी गदीर, विलायत, अली की मोहब्बत, अली मौला, ये क्यों खत्म हो जाती है फैमिलीज में या इंडिविजुअल्स में? वन ऑफ द रीजन, अगर मुसलसल हराम खाते रहे। मगर तीसरी रिवायत भी इतनी ही मशहूर है, लेकिन वो तो कुछ ज्यादा ही मशहूर हो गई, इसलिए उसको नहीं पढ़ रहा हूं। उसके अंदर हराम हराम तुम्हारे पास आए, इसके बारे में एक बहुत अहम फार्मूला इस्लाम ने दिया, और उसकी डिटेल का वक्त नहीं है, तो मैं बस मसाइब की तरफ आ रहा हूं, सिर्फ ये बात मुकम्मल करके। अच्छा, मैं स्टोरी भी नहीं पढ़ता हूं। सलमान का वाकई आपने सोचा होगा कि मौलाना ने 10 मिनट हमारे वेस्ट कर दी, मशहूर सुना हुआ, और पैगंबर ने हराम खाने वाले और हराम अपनी औलाद को फीड करने वाले के लिए, वो भी सुना होगा, और ये तीसरा तो इससे भी मशहूर है, हबाबा। हबाबा क्या मैसेज हबाबा के वाकये में हमको मिला, बहुत ही मशहूर रिवायत है, आजकल ज्यादा पढ़ी जाती, क्योंकि जब से लोग زیارت پہ کربلا اور نجف جانے لگے تو کوفے میں یہ روایت ہم اکثر لوگوں کو یاد دلاتے ہیں کہ وہ حبابہ کی روایت اسی اسٹریٹ کی روایت. اور کتنی عظیم عورت, میریکل کے ذریعے چوتھے امام نے ان کو جوانی واپس کی. آٹھ امام کا زمانہ دیکھا ہے, وہ باقی باتیں تو کیا, ٹائم ہی نہیں ہے تو کیا آپ کا ٹائم لوں, لیکن ایک جملہ کہنا پڑے گا, اس کے بغیر یہ میسج آپ تک نہیں پہنچے گا. حبابہ ایک نئی شیعہ, رسول اللہ کے زمانے میں پیدا بھی نہیں ہوئی تھی, امام علی کے زمانے میں شیعہ ہوئی, اور امام علی خود موجود ہیں کوفے میں. انتظامیہ سے ایک گزارش ہے کہ مجمع کا بھی خیال کیجئے آپ, اور میرا بھی ذرا خیال کیجئے کچھ, یا ٹمپریچر کل سے بڑھائیے گا یا فین. خیر, تو اب یہ ہے کہ حبابہ مولا کے زمانے میں پتا چلا کہ مولا ہیں. آپ اور ہم نجف اور کربلا کتنے شوق سے جاتے ہیں, زری کی زیارت, مادو خود علی کی زیارت, جو عبادت ہے دوسری مجلس کا موضوع یہ تھا. وہ حبابہ دوڑ کے آئیں, جہاں بھی رہتی تھی وہاں سے کوفے میں آئیں. ایک بار مولا کے گھر پہ گئیں. اللہ نے آپ میں سے ہر ایک کو علی کے گھر کی زیارت کا شرف دیا ہے, اور کئی بار دیا. بھئی آپ کتنی مرتبہ آپ کربلا جا چکے ہیں, نجف اور کوفہ, اور جب بھی جاتے ہیں مولا کا گھر تو ضرور دیکھتے ہیں. وہاں پہنچی, لوگوں نے کہا یہاں دروازہ کیوں نوک کر رہی ہو, کالی سے ملنا, کالی اپنے گھر پہ اس وقت ہوتے ہی نہیں. بڑی آرگنائز زندگی ہے میرے مولا کی. جتنا زیادہ ہم لوگ ٹائم کے بارے میں کیئر لیس ہیں, اتنا ہی علی کی زندگی, یعنی جو اردو میں کہا جاتا ہے کہ اس کو دیکھ کے آپ اپنی گھڑی کو ایڈجسٹ کر لیں, فلاں آدمی اتنا زیادہ پنکچوئل. مولا کا ٹائم ہے, یہ مسجد, یہ آرام, یہ کوٹ, وہ جو مسجد کوفہ میں علی کا کوٹ تھا دکت القضا, یہ بازاروں کا سروے, روزانہ بازار مارکیٹ کا سروے. اسلام میں نہیں, اسلام تو غلط کہہ گیا میں, مومن اسپریچول, ساری خرابیاں ہی آتی ہیں مارکیٹ سے. وہی شہید دست غیب کی کتاب کا تیسری مرتبہ آج ریفرنس دے رہا ہوں, شیطان کا جملہ کہ اللہ کا گھر مسجد ہے اور مارکیٹ میرا گھر ہے, میں روزانہ یہاں پہ بیٹھا رہتا ہوں صبح سے شام تک. خیر, تو اس جملے کی تشریح بھی ہے, لیکن فی الحال آج کا جو ٹاپک ہے کسی طرح تو مکمل ہو. تو کہا کہ یہ تو وہ ٹائم کہ روزانہ اس ٹائم پہ علی بازار میں ہوتے ہیں, بازار میں ملیں گے. واقعا اردو کے اندر ایک کہاوت ہے کہ فلاں آدمی کو دیکھ کے ہم اپنی گھڑی ایڈجسٹ کرتے ہیں. مولا کا یہی سسٹم تھا, ہر ایک نے کہا, جو صبح سے مارکیٹ نہیں گیا اس نے بھی یہ کہا کہ جی وہ بازار میں ہوں گے, بازار میں پہنچی دیکھا, ہاں بازار میں ہے. پرانے زمانے کے بازار شاید آج بھی ایسا ہو, شاید نہ ہوتا, کہ بازار میں سیکشن ہوتے ہیں, یہاں گروسری, یہاں پہ کپڑے, یہاں پہ یہ فضول باتیں. گوشت کا جو سیکشن ہے مولا وہاں تھے, اور گوشت میں بھی پھر ایک سیکشن تھا سی فوڈ کا, مولا وہاں تھے, اور دکاندار کو پنش کر کے اس کی دکان سے اٹھا رہے تھے, اور اپنے ساتھ کمبر سے کہہ رہے تھے اس کی دکان کو سیل کر دو, لاک کر دو, سیل کر دو, اس کا پرمٹ واپس لے لو, اسے بزنس کی اجازت نہیں. اب مولا کے صحابی قریب کھڑے, انہوں نے پوچھا مولا کیوں, وائے؟ یہ وائے آبجیکشن کے لیے نہیں ہے, بات سمجھنا ہے. مولا نے کہا اس لیے کہ یہ اس مچھلی کو بیچ رہا جس پہ بنی اسرائیل کی قوم ہے جس پہ اللہ کا عذاب آیا, اور مروان کا لشکر ہے یہ, اے مروان کے لشکر اور بنی اسرائیل کی عذاب والی قوم کو بیچنے والے, علی کی حکومت اور خلافت میں, یعنی وہ مچھلی جس پر اسکیل نہیں ہوتے, چھلکے نہیں ہوتے, پتہ نہیں اس کو گجراتی میں کیا کہتے ہیں, لیکن آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے. تو خلاصہ یہ, مولا نے کہا کہ یہ حرام مچھلی بیچ رہا, اور یہ جانور تو بہت سارے حرام, مگر یہ تو وہ حرام ہے جس پر عذاب خدا آیا تھا. صحابی امام نے کہا تو مولا یہ لوگ غلطی کیا کرتے تھے جو عذاب آیا, اللہ ایسے تو عذاب نہیں دیتا. کہا کہ یہ وہ لوگ تھے جو اپنی داڑھی شیو کر کے گھر سے نکلا کرتے تھے. مولا کا زمانہ ہوتا تو بہت سارے ایسے آڈینس ہے کہ آڈینس نہیں ہوتے, مچھلیاں تیر رہی ہوتی ہیں, اس میں ہم کو تقریر کرنا پڑتی. یہ خدا کا احسان ہے. وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ وَأَنْتَ فِيهِمْ, اے رسول تمہارے آنے کے بعد تمہاری قوم پر اس طرح کا عذاب نہیں آئے گا. شکر ہے خدا کا, अगर हम मूसा की उम्मत में पैदा होते पता नहीं कितनी बार मछली बन चुके होते, और ईसा की उम्मत में पैदा होते पता नहीं कितनी बार बंदर बन चुके होते। बंदर का जिक्र तो कुरान ने सूरह बकरा में किया। तो खुलासा यह कि मौला ने कहा यह हराम, यह हराम काम करते हैं। अल्लाह ने इस शक्ल की एक मछली बनाई, वो खत्म हो गई, लेकिन कयामत तक के लिए फिर अल्लाह ने एक मछली ऐसी पैदा की, इसको देखो उसको याद करो कि अजाब आया है अजाब। लेकिन फिर मौला ने एक जुमला कहा जो हमारे यहां फिक्र में, दरसे खारिज में, मुश्तहदीन के पास, रिसाले अमलिया में एक मुहावरा बन गए, क्योंकि पांचवें इमाम ने भी इसको रिपीट किया, छठे इमाम ने भी इसको रिपीट किया। जब दुकानदार को पनिश किया, उसको दुकान से बाहर निकाला, उसकी दुकान को सील लगा के लॉक कर दी या लॉक लगा के सील कर दी, तो दुकानदार तो कुछ बोला होगा ना, इसे चुपके से खामोशी से तो कोई आदमी बर्दाश्त नहीं करता। घबरा के कहा मौला मुझे पता ही नहीं था कि यह हराम है। जो एक एक्सक्यूज हम बड़ी मेहनत से बना रहे हैं ना कि कयामत में यही कहेंगे, जो अल्लाह पूछेगा यह हराम क्यों, क्या अच्छा अल्लाह यह भी हराम है, हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था। देखिए शुरू में यह बात सीरियस भी थी। जब मैंने वो जो कराची का वाकया पढ़ा कि भाई शादी के मौके पर बीवी तुम्हारी महरम बनेगी, वो भी निकाह के बाद सालियां महरम नहीं बनेंगी, अच्छा हम तो बहन समझते हैं छोटी, हमें तो पता ही नहीं था, चले ठीक, भाभी अच्छा वो भी ना महरम होती। हमारे यहां तो इतनी उल्टी शरीयत चलती कि खातून शादी के बाद अपने फादर इन लॉ से हिजाब किया करती है और अपने देवर से बेहिजाब, बल्कि मजाक हंसी, वो हमेशा का महरम हो गया। शायद वो साइन ऑफ रिस्पेक्ट हो, लेकिन बहरहाल अच्छा चाची भी ना महरम, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। बल्कि मैंने कहा ये शुरू में सीरियस भी थी बात, अच्छा तकलीद वाजिब है, हमें नहीं मालूम, बहुत से लोग हैं जो सही थे, आज से 40 साल पहले की बात कर रहा हूं, अच्छा खुमुस भी देना पड़ता है, और चले देना तो पड़ता, वो जो हमारी गाड़ी के टैंक में गैस होती है डेट ऑफ खुमस को, उसका भी कैलकुलेशन करना कि कितनी गैस उसके अंदर बाकी है, इसका भी खुमस है। जो औरत के ड्रेसिंग टेबल पे परफ्यूम की बॉटल में बचा हुआ परफ्यूम है, उसका भी खुमस है। जो बच्चे ने, अब आजकल तो शायद ये आईफोन और पैड आ गया, लेकिन पाकिस्तान इंडिया में स्टिल एक्सरसाइज बुक्स होती है जिसमें बच्चे नोट लिखते हैं, आधी यूज हुई आधी अनयूज है, इसका भी खुमस है। अरे फला नॉवल या मजहबी किताब खरीद के लाए थे, पढ़ी नहीं, घर में रख ली है, इसका भी खुमस है। जब लोग कहते हैं ये बात समझ में आती है, इतने टेक्निकल मसले बहुत से लोगों को नहीं मालूम थे, अभी तक बहुत से लोगों को ये मसला नहीं मालूम कि सम टाइम्स खुमस 24% होता है, 20% नहीं होता है, नहीं मालूम। और जब ये मोमिन कहे कि अच्छा ये भी था तो हमें नहीं मालूम, ये सही। लेकिन जब ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई, पूरा असल मसला हिजाब ही नहीं मालूम, दाढ़ी नहीं मालूम, और सुनना भी नहीं, क्योंकि कयामत के दिन फिर एक्सक्यूज कैसे कहेंगे कि आया अल्लाह हमें तो पता ही नहीं था, अगर सुन लिया तो। अब ये जो है ना, यही दुकानदार बोला मुझे तो पता ही नहीं था कि ये मछली हराम है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ मुस्लिमीन ये मछली को हलाल समझ के खाते हैं। तो समझ में भी आ रही है बात, मौला ने क्या किया, एक्सक्यूज को कबूल कर लिया, नहीं काल फिक सुम्मल मतजर, जब तुम्हें नहीं पता था कि हराम और हलाल बिजनेस में क्या है तो वाय तुमने ये बिजनेस स्टार्ट किया। भाई बिजनेस शुरू करने से पहले बहुत सारी रिक्वायरमेंट हर जगह पूरा करना होती, हमारे यहां पाकिस्तान में समटाइम्स परमिट लेना पड़ता, एक टैक्स रिटर्न जमा करना होता है उसके लिए एक नंबर लेना पड़ता है, और इसी तरह ये सारे काम करोगे, म्यूनिसिपैलिटी से इजाजत लेना होती, बहुत सारी चीज, वो सारे परमिशन लोगे। लेकिन सबसे पहले पहले जो बिजनेस शुरू कर रहे हो उसके बारे में मालूम करो, इसमें हलाल क्या है, इसमें हराम क्या। अल फिक, पहले फिक है सुम्मल मतजर, फिर है बिजनेस, ये कहावत बन गई है महाराजे के पास, ये रिसाले अमलिया के अंदर मुहावरा बन के रह गया। मौला के बाद मासूमीन ने इसको रिपीट किया, लेकिन वो जो ये कह रहा है ना कि जी वो हमें नहीं मालूम, अब जैसे मछली है, वहां मोमिनीन को पता है कि छिलके वाली हलाल है और बगैर छिलके की हराम, लेकिन बहुत से लोग ऐसे जिनको श्रिम, प्रान, लॉबस्टर और क्रैब, इनका फर्क नहीं पता, इनमें से कितने हलाल हैं और कितने हराम, जबकि इसमें से कुछ हलाल हैं कुछ हराम है। अब ये मसाइल तो इस वक्त, अच्छा मसाइल अगर आ जाए मजलिस में तो कोई हरज भी नहीं, लेकिन टाइम भी मुझे देखना है, गम की बड़ी रातें। तो बस अब इतनी सी बात, मौला ने कहा कौन सा बिजनेस कर रहे, गोश्त का गोश्त के मसाले पूछो जाकर, कपड़े का कपड़े के मसाले पूछो, आइसक्रीम का आइसक्रीम के मसाले जाके पूछो, हलाल क्या है हराम क्या, अल्फेक सुम्मल। अच्छा अब क्या हुआ, ये मौला की हदीस है, पांचवें इमाम ने इसमें एक जुमला ऐड कर दिया जो मेरी मजलिस का असल टॉपिक था, ये जुमला पांचवें इमाम ने कहा अल्फेक सुम्मल मतजर। आइए खाली बिजनेस के हवाले से नहीं है, ये हर काम में है, नमाज पढ़ना है पहले मसाले मालूम करो कैसे पढ़ी जाती है नमाज, हज करना है पहले मसाले मालूम करो। लेकिन चूंकि आज का जो टॉपिक और सब्जेक्ट है, इसलिए तिजारत से पहले मसाले सीखो, ये मासूम ने कहा, पांचवें ने ऐड कर दिया जुमला, फरमाया और जो मसाले सीखे बगैर तिजारत करेगा उसके माल में हराम आ ही जाएगा, चाहे वो हराम से बचने की कोशिश भी कर रहा हो। जब मालूमात ही नहीं है ना, लैक ऑफ नॉलेज है, इमाम फरमा रहे हराम आ ही जाएगा। और आज का मौजू ये था कि जिसके घर में हराम आ जाए उसने गोया अपने घर का दरवाजा खोला दुश्मनी अहले बैत को एंटर करने के लिए। कभी आदमी इस नीयत से घर का दरवाजा नहीं खुलता कि चोर या डाकू आ, लेकिन बहरहाल आपने घर का दरवाजा ड्यू टू एनी सीरियस रीजन खुला रखा, ओ बेटा आने वाला है हमें नींद आ रही है सो जाते हैं, दरवाजा खुला रखो, आपने चांस तो दिया ना चोरों डाकू को घर में आने का। तो जहां पे हराम रोजी आएगी घर में रिस्क, दुश्मनी अहले बैत एंटर हो सकती, नमाज उसको रोकेगी वो भी खत्म कर दी हमने हराम खा के, रोजा उससे बचाएगा वो भी हमने खत्म कर दिया, दुआ दुआ या दीला वो भी तो एक दुआ है ना, लेकिन हराम आ गया तो हमने दुआ या दीला का भी बेनिफिट खत्म कर दी। अब देखिए शैतान ने कैसे मसले में हमको उलझा दिया, हमारे घर में हराम इनकम आ जाए वो बाकी सारा काम आसान है, अब ना उसको नमाज की ज्यादा फिक्र है शैतान को, ना रोजे की, ना दुआ की, ना दुश्मनी अहले बैत की, ये खुद ही आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी। हाँ किसी वक्त भी आदमी तौबा कर ले, तौबा का दरवाजा हर वक्त खोला, शैतान की सारी जिंदगी की मेहनत, एक तौबा आप कर ले 70 ईयर्स उसने हमको बहकाया, हम बहक भी गए, शराब भी पी, सुअर भी खाया, हराम भी किया, बेहिजाबी भी, नमाजें भी कजा किए, एक तौबा कर ले, अब मालूम हुआ कि सारा का सारा गुना माफ, शैतान की सारी मेहनत खत्म। इसीलिए शैतान इधर आने नहीं देता। हमारे यहां लोग तौबा भी करते हैं शबे कदर में, तो देखिए कैसा तड़प तड़प के तौबा कर रहे होते हैं, ये कोई थोड़ी तौबा, तौबा ये है कि तौबा की है तो हराम से अगर मकान बनाया मकान वापिस कर, और गाड़ी है तो गाड़ी वापिस कर, और अगर पैसे हैं डॉलर तो वो वापिस करे। एक तरीका अल्लाह ने बनाया, एक वे आउट है, एक निकलने का रास्ता, एक एग्जिट है, लेकिन वो भी हमने बंद कर दिया, बाकी बातें तो बहुत होंगी। लेकिन खुलासा ये कि विलायती अली हमें मिल गई, लाख लाख शुक्र के सिजदे करें, लेकिन अब परेशान रहिए कि मरते दम तक इसको बचाना, और मरते दम तक ही नहीं जनरेशन में इसको बचाना, और इसके लिए सिर्फ ओनली एक चीज नहीं है, तो आज का सब्जेक्ट ये बन गया, एक दिन हसद भी आया, एक दिन जिहालत भी आई, अलग अलग चीजें आ रही, तो कोशिश करें कि हराम ना आने पाए, अगर आ जाए तो उसका तरीका पूछें। मसलन कुछ लोगों के पास ऑस्ट्रेलिया में ऐसी फ्रेंचाइज है जहां पे बाकी सब चीज हलाल है, उनको पॉर्क के सैंडविच भी बेचना। अब ये तो हर एक को मालूम है कि हराम है, लेकिन बहुत ही एक्सट्रीम केस है कि उसके बगैर वो मर जाएंगे, तो इस एक्सट्रीम केस में इजाजत थी, लेकिन शर्त ये थी कि जितनी इसकी इनकम आएगी, ये कैलकुलेशन कर कि एक दिन में या एक वीक में या एक मंथ में कितने आपने पॉर्क के सैंडविच बेचे, इसके पैसे निकाल के अलग करेंगे और मर्जे को वापस करेंगे। देखिए अब ये है तौबा, मजबूर हैं तो हराम हो गया तो अल्लाह माफ करेगा, वो पैसे उसको भी पाक करना पड़ता है। ये पूरा एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है तौबा का तरीका। लेकिन अगर ये न किया, यानी हराम से अपने आप को नहीं बचाए, तो आदमी आहिस्ता आहिस्ता दुश्मन अहले बैत बनता है। और दुश्मन अहले बैत तो खैर यही बहुत बड़ी चीज, ह्यूमैनिटी से भी बाहर निकल जाता। कुछ चीजें ऐसी हैं कि हमने कहा कि भाई अहले बैत की मोहब्बत ये काम ना कर, कुछ चीजें ऐसी हैं कि अहले बैत से मोहब्बत हो कि ना हो लेकिन इंसानियत उससे भी बाहर निकल जाता। करबला के मैदान में जो दुश्मन इमाम हैं, आशूर के दिन जिहाद शुरू होने से पहले मौला ने रीजन बता दिया, तुम्हारे पेट में हराम लुकमे गए, हराम खाने गए, मगर ये लोग खाली दुश्मन इमाम नहीं हैं, ये इंसानियत से भी बाहर। वरना एक 6 महीने का बच्चा 3 दिन का प्यासा। आका हुसैन न सिर्फ ये कि इस बच्चे को लेके आ रहे हैं, बल्कि वो सारे तरीके भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये कोई एक्सक्यूज ना लाए। कहा शायद तुम समझते हो कि मैं खुद पानी चाहता हूं, बच्चे का नाम यूज कर रहा हूं, तुम मुझे पानी दोगे मैं पी लूंगा, चलो मैं बच्चे को जमीन पे लेटा के हट जाता हूं, चला जाता हूं, तुम आके पानी पिला दो। देखिए ये एक्ट एक दुश्मनी है अहले बैत या दुश्मनी है इस्लाम का नहीं है, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है कि 6 महीने का बच्चा। यही रीजन कि करबला में जितने भी जुल्म हुए और करबला में जितने भी मजलूम हैं, सबसे ज्यादा जिस मजलूम ने इफेक्ट डाला है लोगों पर वो असगर। खुद मैदान करबला में भी लश्कर यजीद रोया, मगर रोया, आगे बढ़ के पानी नहीं दिया। और नॉन मुस्लिम शायरों ने भी फ्रेंच जबान में जनाब अली असगर के हाल का पूरा मरसिया है। खुद इंडिया के कितने ही हिंदू ऐसे हैं कि करबला के बाकी वाकयात नहीं, असगर ये हुसैन की सच्चाई का सबसे बड़ा विटनेस भी। कि अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि ये कोई चेयर का मसला था, हुकूमत का मसला था, तख्तो ताज का मसला था, तो असगर की शहादत शायद ये भी वन ऑफ द रीजन हो कि जो रिवायत मैंने दूसरी मुहर्रम को पढ़ी थी, ईव ऑफ सेकेंड मुहर्रम, ये हुसैन ने असगर से कहा था, असगर बेटा मैं तुझे तेरी बहन सुगरा से अलग ना करता, अगर करबला के जिहाद में मुझे तेरी जरूरत है, तेरे बगैर मेरा जिहाद इनकम्प्लीट रहेगा। करबला का एक ऐसा शहीद कि 2-3 बातें असगर की शहादत के हवाले से बहुत ही ज्यादा यूनिक हैं, जो पूरे करबला के मसाइब एक तरफ ये अलग। मसलन हुसैन का टाइटल कुरान ने रखा नफ्से मुतमइन्ना, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, सेटिस्फाइड सोल, बहुत इत्मीनान, बड़े से बड़ा इम्तिहान दिया, परेशान ना हुए। असगर ओनली शहीद है करबला के मैदान का कि हुसैन जैसा नफ्से मुतमइन्ना परेशान हो गए। करबला का हर शहीद एक मर्तबा मारा गया, असगर करबला का ऐसा शहीद है जो 2 मर्तबा मारा गया। असगर की शहादत को देखते जाइए, कुछ ऐसे असगर की शहादत में वाकयात हैं कि सारे करबला के शहीद एक तरफ, मासूम असगर एक तरफ। असगर करबला के वाकये के बाद कहां पे दफन है, ये जो एक कंट्रोवर्सी खड़ी है, और अब ज्यादातर उलमा कहते हैं कि आका हुसैन के सीने पर। आका की कब्र पाइंती तो अली अकबर, एक रिवायत है कि अली असगर भी आका हुसैन के पाइंती, एक रिवायत है नहीं, असगर हुसैन के सीने पर है। ये जुमला खुद मेरे उस जुमले की एक्सप्लेनेशन है कि असगर दो मर्तबा मारा गया। हुसैन करबला के बड़े से बड़े इम्तिहान में भी परेशान नहीं हुए, असगर की शहादत ने हुसैन को भी परेशान कर दिया। शब आशूर, जो कल रात को मैंने शब आशूर के मसाइब में ओनो मोहम्मद का जिक्र किया था, यानी जनाब जैनब के खेमे, उसी को कंटिन्यू करता हूं। आधी रात के बाद आका हुसैन अब सैदानियों का इम्तिहान लेने निकले। चिराग गुल करके मर्दों का इम्तिहान तो मगरिब के बाद हो गया, अब सैदानियों की क्या हालत। हर खेमे के करीब से जा रहे हैं, हर खेमे में हर बीवी कल की कुर्बानी के लिए तैयार भी है, खुश भी है। ऐसी माएं दुनिया में आपको कहीं ना मिलेंगी सिवाय करबला, जो खुश हैं कि उनके चांद जैसे बेटे कल मैदान करबला में शहीद होंगे और सर काटे जाएंगे। हां, सिर्फ एक खेमा ऐसा है जहां से हुसैन ने रोने की आवाज सुनी। जैनब खुश, फरवा खुश, लैला खुश, हर एक खुश है और अपनी कुर्बानी कल के लिए तैयार कर रही है। सिर्फ एक खेमा। हुसैन ने देखा ये खेमा किसका, ये तो रबाब का खेमा, रबाब के खेमे से रोने की आवाज आ रही। हुसैन ने देखा रबाब असगर के झूले पर या गहवारे पर सर रखे हुए रो रही। हुसैन रबाब के खेमे में आए। अल्लाह बार बार हमें खेमा गा ले जाए तो वहां आज भी वो जगह है जहां रबाब का खेमा था। हुसैन खेमे में आए, रबाब क्या बात है, क्यों रो रही हो, क्या असगर मर गया? कहा कि नहीं आका, मैं तो अपनी बदकिस्मती पे रो रही हूं। मौला, जब मेरी इस खानदान में शादी हुई और अल्लाह ने मुझे औलाद दे दी तो मैंने अपने आप को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत समझा। भाई वो औरत कितनी लकी है, हुसैन जैसा शौहर मिला, औलाद भी मिल गई। और औलाद भी कैसे कि हर एक की तमन्ना होती है कि बेटा और बेटी। अल्लाह ने बेटी भी दे दी सकीना, अल्लाह ने बेटा भी दे दिया अली असगर। कंप्लीट हो गई फैमिली एक औरत के पॉइंट ऑफ व्यू। हुसैन जैसा शौहर, बेटी सकीना, बेटा असगर। और यूं अगर आप देखिए तो और बाकी बात, अली जैसा खुसर, फातिमा जैसी सास, इससे ज्यादा लकी और खुशकिस्मत कौन सी औरत होगी। मौला आज तक शादी से लेके आज तक बहुत अपनी किस्मत पे खुश थी, आज मुझे अपनी बदकिस्मती का एहसास हो रहा। मौला कल मैं देख रही हूं कि कल के लिए हर बीबी अपनी अपनी कुर्बानी तैयार कर रही। ये कयामत के दिन शहजादी फातिमा के सामने कितना सुरखरू होके जाएंगी, आज मुझे लग रहा है मैं कितनी बदकिस्मत। दो औलादें तो अल्लाह ने दी, लेकिन जो बड़ी है, जो चल सकती है, वो लड़की है। और लड़कियां मैदान जिहाद में नहीं जाती, और जो मैदान जिहाद में जा सकता है लड़का, वो इतना छोटा है कि घुटनों के बल चला के भी नहीं ले जा सकती। दो दो औलादे मगर दोनों में से कोई जिहाद के मैदान के काबिल नहीं। मुझे नहीं मालूम आका ने क्या जवाब दिया, लेकिन मैं होता तो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता, शहजादी रबाब आप समझ रही हैं कि आपकी औलाद कैसे जिहाद करे? अरे आपकी औलाद तो ऐसा जिहाद करेगी कि करबला के सारे जिहाद पीछे रह जाएंगे। आपका असगर कल ऐसा जिहाद करेगा कि लोग अब्बास व अकबर के जिहाद को भूल जाएंगे। और आपकी सकीना शाम के कैद खाने में तमाचे खा खा के ऐसा जिहाद करेगी कि नाम यजीद कयामत तक दाखिल दुश्नाम हो जाएगा। वो सकीना का जिहाद शाम, ये असगर का जिहाद करबला। अगला दिन आया, एक एक शहादतें हुई, आखिर वो वक्त आ गया कि हुसैन अकेले रह गए। मीर अनीस का एक मरसिया है, उसका पहला मिसरा, उलमा कहते बाकी सारा मरसिया छोड़ दो, खाली एक मिसरा। आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है, मेरा आका अकेला रह गया, मेरा आका तन्हा रह गया। अब्बास मारे गए, अकबर मारे गए, ओनो मोहम्मद मारे गए, हबीब इब्ने मुजाहिर मारे गए, हुसैन अकेले। दाएं देखा, बाएं देखा, एक बार आवाज दी, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, कोई है मेरी मदद करने वाला? जवाब तो नहीं आया, खेमे से बीबियों के रोने की आवाज आने लगी। हुसैन उस टीले से नीचे उतरे, खेमे में गए। जैनब क्या बात है, अभी मैं जिंदा हूं, ये रोना किस लिए? कहा भैया तूने कहा हल मिन नासिरिन, असगर ने अपने आप को झूले से जमीन पे गिरा दिया। शायद याद दिला रहा हो बाबा, अभी आपका एक नासिर जिंदा है, जब तक असगर जिंदा है हल मिन नासिरिन ना कहना। और हुसैन असगर को लेके, असगर बेटा अब तेरे जिहाद का वक्त आ गया, असगर को गोद में लेके चले, अबा का दामन डाला हुआ। लश्कर यजीद ने कहा ऐसा लग रहा है हुसैन कुरान लेके आ रहे हैं। और टीले पे गए, कहा कि तुम में साहिब औलाद भी हैं, मेरा ये बच्चा 3 दिन से प्यासा है, इसकी माँ का दूध भी सूख चुका है, अरे हो सके तो इसे चंद कतरे पानी के दे दो। फिर जमीन पे भी लिटाया और फिर दोबारा गोद में उठा के जुमला कहा, असगर बेटा मेरी बात ये नहीं समझ रहे हैं, तुम तो हुज्जत खुदा के पोते हो ना, तुम खुद अपनी हुज्जत तमाम करो। बस इतना कहना था, असगर ने नन्नी सी जबान निकाली, सूखे होठों पे जबान फेरना शुरू की। मैं ये मंजर देख के लश्कर यजीद तक मुंह फेर के रोने लगा। यह है असगर का जिहाद, यह असगर की जबान नहीं है, यह करबला की जुल्फकार चल रही है। लश्कर यजीद रो रहा है, हम तो फिर भी मौलाई और विलायती। और उधर उमर साथ परेशान हुआ, दौड़ के आया, हरमुला से कहा, हरमुला तू मेरी फौज का सबसे बड़ा तीरंदाज है, मैंने तुझे अब तक जहमत नहीं दी, सिर्फ एक मरतबा पहले बुलाया था, आज तेरी जरूरत पड़ गई। अगर इसी तरह से असगर मेरी फौज के सामने रहा और हुसैन जिक्र करते रहे तो बगावत हो जाएगी, मेरे सिपाही मेरे खिलाफ होंगे। इकता कलामल हुसैन, आए हरमुला तू अरब का सबसे बड़ा तीर अंदाज, हुसैन के कलाम को काट दे। एक बार हरमुला ने अपने तीर देखे, एक भाल का तीर भी था, दो भाल के तीर भी थे, 3 भाल का भी तीर था। अरब में एक आम आदमी की गर्दन तोड़ने के लिए 1 भाल का तीर इस्तेमाल होता, और अगर घोड़े की गर्दन तोड़ना हो या किसी दरख्त में सुराख करना हो तो 3 भाल का तीर। अरे कहा घोड़े की गर्दन, कहा चश्मा है असगर का नन्ना सा नाजुक गला। हरमुला ने 3 भाल का तीर निकाला, अपनी कमान में लगाया, कमान खींचना चाहता है, हाथ कांपे, तीरों कमान गिर पड़े। दोबारा कोशिश की, जब 3री मरतबा तीर न फेंका गया तो उसका करीबी दोस्त सनान आया, अरे हरमुला अगर कोई मुझसे पूछे आज अरब का सबसे बड़ा तीरंदाज कौन है, मैं तेरा नाम लूंगा। एक नन्हे से बच्चे से डर गया, तीर नहीं फेंका जा रहा। कहा बच्चे की बात नहीं है, इधर तीर फेंकना चाहता हूं, खेमे का पर्दा इस तरह हलता है जैसे बच्चे की माँ खेमे के दरवाजे पे खड़ी। अरे माँ की आंखों के सामने उसके लाल को 3 भाल का तीर, मंजर लाइए करबला का, रबाब खेमे के दरवाजे पे है, असगर को देख रही है। सनान ने हरमुला से कहा मैं तेरी आंखों पे हाथ रखता हूं। एक तीर चला, 3 भाल का तीर चला, असगर के नन्हे से गले में इस तरह पेवस्त हुआ कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक पूरा गला छिद के रह गया, खून का फव्वारा बुलंद हुआ। आका हुसैन ने तीर निकालना चाहा, असगर तड़प गया, दोबारा कोशिश की, असगर तड़प गया। हुसैन ने कहा असगर मुझे पता है तुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मगर शेर खुदा का पोता है, हुसैन का बेटा है, अब्बास जरी का भतीजा है, मैं तीर निकालता हूं, थोड़ी देर सब्र कर। अब जो हुसैन ने तीर निकाला, बच्चा कुछ ना बोला मगर तीर ही नहीं निकला, बच्चे की जान भी निकल गई, असगर दुनिया से गया, खून का फव्वारा बुलंद हुआ। एक बार हुसैन ने चिल्लू में खून लिया, आसमान की जानिब फेंकना चाहते हैं, आसमान कांप गया, मौला ये खून मेरी जानिब ना आए, कयामत तक बारिश नहीं होगी। जमीन पे फेंकना चाहा, जमीन थर्रा उठी, आका ये बेगुनाह खून ना आए, कयामत तक कुछ पैदा ना होगा। हुसैन अजीब मंजिल में है, चिल्लू में असगर का खून है, इनकार आसमां को है, राजी जमीन नहीं, असगर तेरे खून का ठिकाना कहीं नहीं। नहीं ठिकाना मिला, हुसैन ने ये खून अपने चेहरे पे मल लिया। नाना के सामने जाऊंगा, असगर के खून को लेके जाऊंगा। और एक बार जो जुमला मैंने कहा पूरे करबला के जिहाद में, एक ही बार हुसैन परेशान हुए, असगर का लाशा हाथ में है, बहुत परेशान है, खेमे में ले जाऊं मां कैसे देखेगी या ना ले जाऊं, इतना परेशान हुए कि आशूर के दिन आप भी हुसैन की पैरवी करेंगे। सात मर्तबा मेरा आका आगे बढ़ रहा है, सात मर्तबा मेरा आका पीछे हट रहा है, गोद में शशमाह असगर का लाशा है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह। और आखिर में फैसला किया माँ को ज़ियारत करा के दफन करना है। खेमे के दरवाजे पर रबाब खड़ी हैं, असगर को आता देखा, बस एक जुमला कहा, या बुनैया मिस्ल का युनहर, अरे अरब में तो 6 महीने का ऊंट भी ज़बा नहीं होता। हाय मेरा चश्मा, हाय मेरे 6 महीने का। खुदा बंदा, जिस मजलिस में मसाहिब अली असगर पढ़े जाते हैं, खुसूसी तौर पर शहजादी ये कौनैन फातिमा ज़हरा अपने इस पोते के गम को सुनने आती हैं, खुदा बंदा तुझे वास्ता इस खून ना हक का। आसमान कांप रहा है, जमीन लरज रही है, आका हुसैन के चेहरे पे ये खून है। जो मजलिस में मोमिनीन और मोमिनात गिरिया कर रहे हैं, इनके गिरिए का वास्ता गमे हुसैन के सिवा इन्हें दुनिया आखिरत के हर गम से महफूज फरमाओ। खुदावंदा खून नाहक असगर का वास्ता इनकी सारी हाजतें पूरी फरमा। इनको, इनकी औलादों को, इनके घरों को, इनके घर वालों को, इनकी रोजी के जराए को हर परेशानी से महफूज फरमा। खुदावंदा आसमान कांपा, जमीन लर्जी, इस खून नाहक का इंतकाम लेने के लिए अपनी आखिरी हुज्जत वारिस मासूमीन इमाम जमाना के जहूर में ताजील फरमा।